आपको अभी शुरू तो नहीं कर रहे थे? ऑस्कर दें अकॉर्डिंग को जजाकुमुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری کلاس اخلاق و عادات نبویہ یعنی شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس ہے. اس کے خطبے میں بھی اس عاجز نے سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھی جس میں کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم فرماتے ہیں تمام ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھا کرو پڑھو. تو اس حکم کی تعمیل میں بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی وجہ سے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے, خصوصاً جو حدیث مبارکہ کی کلاس ہو یا شمائل کی کلاس ہو, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس ہو, تو اس میں تو عقل والے لوگ مستقل ہی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ مستقل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں یہ تسہیل بہشتی زیور کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 119 ہے, 119, جس کے اوپر ہم مزاج و عادات مبارکہ پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے پیچھے سے تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بہت سخی تھے, کسی سوالی کو نہیں کبھی نہیں کہا, اگر کچھ ہوتا تو دے دیتے, نہ ہوتا تو نرمی سے سمجھا دیتے اور کسی اور وقت دینے کا وعدہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بڑے سچے تھے, آپ کی طبیعت بہت نرم تھی, سب باتوں میں سہولت اور آسانی کا معاملہ فرماتے تھے, یعنی بلا ضرورت چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کمپلیکس نہیں بناتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ بلا ضرورت نہ خامخواہ چیزوں کو جو ہے وہ مشکل بنا دیا جائے. سہولت اور آسانی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ دین بھی جو ہے وہ بہت سہولت والا دین ہے. ہم کمزور ہیں اور کمزوروں کے لیے یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو تسلیم کریں, مشکل مت بنائیں اپنے لیے, کیونکہ کمزور جو ہے وہ مشکل کام کر نہیں سکتا. تو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بہت خیال رکھتے کہ ان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچے, یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آہستہ جوتے پہنتے, بہت آہستہ سے کباڑ کھولتے, بہت وقار کے ساتھ چلتے. اگر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو بھی سب کام چپکے کرتے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کام کرنا ہے اپنا لیکن سارے گھر کو تو نہیں اٹھانا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی, تو ہم بھی اپنی تربیت اگر کر لیں اور کروا لیں تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں, ورنہ اگر تربیت نہ ہو تو پچھلی کلاس میں کیا بات ہوئی تھی کہ خود اٹھتے ہیں تو بیوی کو اٹھانے کے لیے پھر پورا بستر ہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بیوی جو ہے وہ اٹھ جائے. اس طریقے سے کسی کو اٹھانا جو ہے, بیوی تو کیا کسی بچے کو بھی اس طریقے سے اٹھانا جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, بلکہ سہولت سے हल्का हल्का हिला करके, हल्का हल्के से आवाज दे करके, बात करके, इस तरीके से जो है वो किसी को उठाना, ये तमीज का तरीका होता है। तो अगर उठाने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ इस वजह से कि मैं उठ गया हूं तो अब ये क्यों सो रहे हैं, तो इस वजह से किसी को उठा दिया, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब चीज नहीं है। आगे पढ़ते हैं कि निगाह हमेशा नीची रखते, बहुत से आदमियों के साथ चलते तो औरों से पीछे रहते। यानी जब एक ग्रुप के अंदर चल रहे होते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। आगे बढ़ने की कोशिश से यहाँ पर मुराद ये नहीं है कि नेकी के काम में सबकत करना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कोशिश नहीं करते थे, नहीं। यहाँ पे नेकी के काम की बात नहीं हो रही, नेकी के काम के अंदर तो सबकत करना ये तो जाहिर है नबी इसके अंदर सबसे आगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अपने आप को जो है ना वो प्रोमिनेंट बनाने की कोशिश करना, अपने आप को जो है वो सबसे आगे दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। इसी को हम एक और नजर से भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों के अंदर ये जो एक सिफत होती है कि वो बहुत ही जो है ना वो क्या कहते हैं चीजों के अंदर बेखामखा किए कि उन्होंने पैशन को पाला हुआ होता है, जिसको अंग्रेजी के ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल करके ना, फिर वो अपनी इस तरह की सिफत को जो है वो बहुत अच्छा समझते हैं कि जी ये तो मेरा पैशन है, या तो मेरा ये तो मेरा एम्बिशन है। तो एम्बिशन और पैशन इस तरह के करके ना बस अपने आप को जो है वो जुदा बनाना, अपने आप को जो है वो दूसरों से एक अलग बनाना, ठीक है, और आगे आगे बढ़ने की कोशिश करना, जहां पर कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने का फायदा नहीं है, सिवाय इसके के बस एक एक जो है वो यानी मीडिया पर्सनालिटी बन जाए, ठीक है, या अपनी कोई जो है ना वो ख्वाहिश पूरी हो जाए बस, ठीक है। तो इस तरह की जो जो आदतें होती हैं, तो एक तो ये कि ये है ही नहीं मुनासिब, ये सही 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 आदतें नहीं होती हैं, और दूसरी ये है कि अक्सर जो है ना वो इनकी वजह से इंसान को नुकसान भी बहुत होता है, ठीक है। तो खामखा का जो है वो एक नुकसान पाल देना जो है वो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर इसके अंदर एक और भी एस्पेक्ट के खवातीन की भी क्लास है, और खवातीन के हाथों में जो है वो अल्लाह ताला ने बच्चों की जिम्मेदारी भी दी हुई होती है, तो बच्चों की भी जो जहनीयत है ना वो इस तरह से मत बनानी चाहिए, इस तरह से नहीं बनानी चाहिए कि उनको हर वक्त जो है ना वो बस कुछ अछूता बनने की का मिजाज बनाए। हमेशा उसको जो बच्चों को जो है ना वो इन बातों के अंदर इंकरेज करें कि जिन बातों में और तो कोई फायदा नहीं है, बस ये है कि बस एक जुदा नजर आए, एक जो है वो कोई अजीब व गरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना वो उनको इंकरेज कर रहे हैं। जैसे ये देखा कि छोटी बच्ची होती है तो कहीं पे गाना बज रहा है, तो गाना बज रहे के ऊपर जो है बच्ची ने जो है वो नाचना शुरू कर दिया, टीवी के ऊपर देखा था तो भाई कोई नाच रही थी तो वो उसने भी नाचना शुरू कर दिया। तो अब इसको जो है वो औरतें या इवन मर्द भी जो है वो फिर एनकरेज करते हैं कि वाह 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 कितना अच्छा नाच रही है, वाह 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 कितना अच्छा जो है वो डांस कर रही है, और उसके ऊपर जो है वो तालियां बजाना शुरू करते हैं। और बच्ची जो है वो फिर वो जाहिर है जिस चीज के ऊपर आप बच्चे को एनकरेज करेंगे तो वो तो और ज्यादा वो करना चाहेगा ना, ठीक है। तो भाई नेकी काम के ऊपर एनकरेज करें, अच्छे अखलाक के ऊपर एनकरेज करें, ताकि वो और नेकी का काम करना चाहे और अच्छे अखलाक अपनाना चाहे। लेकिन हम तो जो है ना वो हर उल्टी सीधी चीज जो है ना वो उसके अंदर कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है वो दूसरों से जुदा नजर आना शुरू हो जाए, कोई और यानी कोई अछूती किस्म की मखलूक बन जाए, तो हम उसके ऊपर जो है वो एनकरेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह लड़कों को भी जो है वो 30 मार खान बनना, ठीक है, 30 मार खान बनने के ऊपर जो है ना वो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, और वो उसके ऊपर बच्चों को जो है वो इनकरेज करते हैं। वो 30 मार तो क्या करेगा, वो अच्छे 30 बुरों को मारने की बजाय वो 30 अच्छों को मारने वाला बन जाता है, 30 मार खान, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजों को जो है वो खराब करके जो है ना वो दूसरों से आगे बढ़ने वाली किस्म की अजीब वगैरह किस्म की शख्सियत बन जाती है। इस तरह से जो बच्चे होते हैं तो फिर वो फसाद के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और फिर वो अपनी जिंदगी में भी फसाद पैदा करते हैं और दूसरों की जिंदगी को भी खराब करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की क्या सिफत थी कि जब दूसरों के साथ रहते थे ना तो घुल मिल करके अंदर अंदर रहते थे, एकदम सबसे प्रोमिनेंट बनने की कोशिश नहीं करते थे, पीछे पीछे रहते थे। फिर उसके बाद जो सामने आता उसको पहले खुद सलाम करते थे, ठीक है। तो ये एक आजिजी का इजहार भी होता है, और इंसान की आजिजी जो है वैसे तो सिर्फ जाहिरी तौर पर आजिजी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से दूसरों को आजिजी दिखाए, अंदर से भी आजिजी होनी चाहिए, अंदर से भी अपने आप को जो है वो दूसरों से बड़ा और अफजल ना समझे। सिवाय इसके कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर के छोटों को जो है वो अदब सिखाना, ठीक है, तो वहां पर नियत बिल्कुल मुख्तलिफ कि भाई अदब सिखाने की वजह से, अदब सिखाना क्यों, ताकि उनका फायदा हो जाए, वो दूसरों का, वो बड़ों का अदब करेंगे तो उनका फायदा होगा, तो दूसरे को अदब सिखाना भी जो है वो खैरख्वाही की नीयत से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी खैरख्वाही हो रही है ना, वो अदब सीखेंगे तो उनको दुनिया में भी फायदा होगा, उनका आखिरत में भी फायदा होगा। लेकिन किसी को अदब सिखाना इस नीयत से मैं बड़ा हूं, उसने मेरा अदब क्यों नहीं किया, ठीक है ना, उसकी मजाल कैसे कि उसने जो है वो मुझे सलाम क्यों नहीं किया, ये जायज नीयत नहीं है, बल्कि ये नाजायज नीयत है और हराम नीयत है, क्योंकि इसके अंदर तकब्बुर है, और तकब्बुर जो है वो किसी सूरत जायज नहीं हो सकता, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम सामने आने वाले को पहले खुद सलाम करते थे, और वैसे भी हदीस मुबारक का भी यही मफहूम है कि जो 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 खुद सलाम के अंदर पहल करता है तो वो ज्यादा बेहतर इंसान होता है। जब बैठते तो बहुत आजजी की सूरत बना करके, जब खाना खाते तो बहुत ही गरीबों की तरह बैठ करके, ठीक है। आजजी की सूरत का मतलब क्या होता है कि यानी कोई रोनी सूरत बना करके बैठना, या कोई उदास नऊज़ बिल्ला, जैसे उदास उल्लू होता है ना, ये एक मुहावरा भी उर्दू जुबान का, उदास उल्लू जो है वो बैठा हुआ है, कुछ अजीब गरीब किस्म की उसने शक्ल बनाई हुई है, नहीं, बल्कि आजजी की सूरत बना के बैठने का मतलब ये है कि आजजी का जो लफ्ज है ना, ये इज से आया, और इसका मतलब होता है कि जो हार गया, ठीक है ना, आजिज हो जाना, हार जाने को कहते हैं। तो आजजी की सूरत का मतलब यह है कि फतेह मंद, फातह की सूरत बना करके ना बैठना, फातह कि हाँ भी मैंने तो बहुत बड़ा, यानी मैंने तो पहाड़ सर कर लिया है, मैंने तो जो है ना वो इतनी जो है वो फतुहात हासिल कर ली है, मैं तो इतना कामयाब हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना, वो एक उसकी शक्ल जो होती है वो अजीब व गरीब किस्म की एक फातह की शक्ल होती है, कॉन्करर, जैसे कि उसने जो है ना वो दुनिया को फतह कर लिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो जब हकीकत में फतह कर भी लिया था, फतह मक्का का जो दिन था, ठीक है, तो उस दिन भी नबी अलैहिस्सलाम ने आजिजी की सूरत बनाई हुई थी, सर को झुकाया हुआ था, और सारी की सारी जो जो क्रेडिट था वो अल्लाह ताला की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा अंजजा व नसर, क्या था, नसर अब्दा व हजम अल अहजाब वहदा, है ना, सारी की सारी तारीफ जो है वो उस जात के लिए कि जो कि वाहिद है, जो कि तनहा है, वहदा, और उसने जो है वो अपने बंदे की मदद फरमाई, और सारे के सारे लश्करों को उसने अकेले ही शिकस्त दे दी, अल्लाह ताला की तरफ सारी की सारी जो फतहमंदी थी वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दी। तो जिस दिन हकीकी फतह नबी अलैहि सलाम को दुनियावी एतबार से मिल भी गई थी, उस दिन भी आजजी, तो जब नॉर्मल हालात थे, आम जिंदगी गुजर रही थी, तो उस वक्त नबी अलैहि सलाम कितनी आजजी की सूरत बना के रखते होंगे, ठीक है। जब खाना खाते तो बहुत ही गरीबों की तरह बैठकर, पेट भर कर खाना नहीं खाया, गरीबों की तरह बैठ करके, यानी जमीन पर बैठ करके खाना खाना, और दो जानू बैठ करके, यानी जिस तरह से कि यानी सुन्नत तरीके जो है वो खाना खाने के लिए, जैसे कि तशहुद की हालत में बैठा जाता है, जो नमाज के अंदर जलसा होता है उसमें जिस तरीके से बैठते हैं ना, तो वो एक तरीका है सुन्नत बैठ के खाना खाने का, और दूसरा तरीका जो है वो तो यानी बहुत ही हम जैसों के लिए तो वो तकरीबन नामुमकिन है, कि जैसे एक खड़ा हुआ इंसान जो है वो क्या क्या कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, पंजों के बल, पंजों के बल जैसे आप बैठ जाए ना, कि इंसान की जो बैक है, सुरीन जो है वो जमीन पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि सुरीन जो है वो जमीन से उठी हुई है, ठीक है, और बस पंजों के बल बैठे हैं। तो इस तरीके से खाना खाना, ये भी सुन्नत तरीका है खाना खाने। आजकल जो फार्म की मुर्गियां खाने के बाद जो हमारे हड्डियों का हशर होता है, तो उन हड्डियों के हशर के साथ तो फिर इंसान जमीन पर बैठ के सिरे से खाने ही नहीं खा सकता, बल्कि जमीन पर बैठ के कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर कुर्सी पर बैठ करके जो है वो जिक्र भी कुर्सी पर बैठ करके हो रहा है, और मुराकबा भी कुर्सी पर बैठ करके हो रहा है, हत्ता कि फिर जल्द ही वो वक्त आ जाता है कि नमाज भी कुर्सी पर बैठ करके हो रही होती है। तो जमीन पर बैठ के खाना कहाँ से खाएंगे फिर। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम तो फार्मी मुर्गी का खाना नहीं खाते थे, मुर्गी नहीं खाते थे ना। और जो हमारे अकाबरीन जो पिछले जमाने के लोग हैं, तो उनके माशाल्लाह पैरों के हालात बहुत अच्छे होते थे हमारे मुकाबले में। तो खैर, पेट भर कर खाना नहीं खाया, कुर्सी पर बैठ करके वैसे खाना खाने में एक एक नेचुरल बात ये भी होती है, तभी बात कि खाना जो है वो जाता रहता है अंदर, और पेट जो है वो उसको कोई दबाने वाली कोई चीज नहीं होती। सुन्नत तरीके से जब बैठ के खाना खाते हैं ना, तो पेट जो है वो दबता भी है, और जब वो दबता है ना, तो फिर मजीद खाना खाने की गुंजाइश भी नहीं रहती उसके अंदर। आगे फरमाया कि तकल्लुफ, कि तकल्लुफ की तश्तरियों में कभी नहीं खाया। तकल्लुफ की तश्तरियां यानी बहुत ही रंग रोगन लगी हुई और सोने चांदी की बनी हुई तश्तरियाँ, इस तरह के बर्तनों के अंदर, या बहुत ही ज्यादा यानी कैसे हैं इनामर्ड किस्म की डिजाइन वाली, तो ऐसी तश्तरियों में नबी अलैहि सलाम ने खाना नहीं खाया। अब हमारे यहाँ जाहिर डिनर सेट्स जो है वो इकट्ठा करने के ऊपर अच्छा खासा जोर होता है, तो ठीक है भाई, डिनर सेट जो है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, खवातीन जो है वो कहेंगे अब ये भी छोड़ दें क्या। तो इस वजह से आजकल के जो मशाइख हैं वो इन चीजों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाते, बल्कि आप ठीक है रख लें घर के अंदर, लेकिन कोशिश करें कि भाई ये जो चीजें हैं ये बाहर ही रहें, ठीक है, यानी ये डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रहें, ये जो है वो अपने जो जो आपके अलमारियां होती हैं, शोकेसेस होते हैं, तो ये वहीं पर रहें, ठीक है, ये बस दिल के अंदर ना आ जाए, ठीक है, दिल के अंदर जब ये चीजें घुस जाती हैं तो फिर उसके बाद मामला खराब हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दिल के बाहर ही रहें, उनको दिल के अंदर जगह देने की जरूरत नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में जगह देने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, फिर वो बाहर भी जगह नहीं देते थे इन चीजों को, ठीक है, हर वक्त अल्लाह ताला के खौफ से गमगीन रहते थे, अल्लाह ताला के खौफ से गमगीन रहते थे। तो अल्लाह ताला का खौफ क्या चीज होती है, कि अल्लाह ताला की नाराजगी का खौफ, ठीक है, कि अल्लाह ताला मुझसे राजी रहे, मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे कि मैं अपने रब को नाराज कर बैठूं, ठीक है। तो एक तो ये होता है, अल्लाह ताला से डरने का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की नाराजगी से डरना, ठीक है, क्योंकि महबूब की नाराजगी जो है ना, ये मुहिब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा इसका दर्जा ये होता है अल्लाह ताला के खौफ का, कि इंसान अल्लाह ताला की बेनियाजी से डरता है, ठीक है, कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना तो मेरा काम है ना, मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा तो रब एक ही है, एक ही है जिसने के मुझे बनाया है और जो के मुझे चलाता है इस दुनिया के अंदर, मेरा राजिक है, मालिक है, और जिसके पास मुझे लौट करके जाना है, ठीक है, तो मेरा तो एक ही रब है। लेकिन रब का तो एक मैं बंदा नहीं हूं ना खाली, रब के तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, ठीक है ना, इंसान भी जो है वो खरबों, फिर उसके बाद जिन भी, पता नहीं कितने खरब तो जिन होंगे, फिर फरिश्ते, उनके तो कोई हिसाब ही कोई नहीं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक है, हैवानात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, ये सैयारे हैं, सितारे हैं, ये सब का सब अल्लाह ताला की मखलूक है ना। तो अल्लाह ताला को मेरी तो कोई क्या मतलब, मेरी क्या हैसियत है इस तमाम की तमाम कायनात के अंदर, मेरी क्या हैसियत है। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला की बेनियाजी, कि अल्लाह ताला को मेरी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी की हाजत नहीं है तो मेरी क्या हाजत होगी। ठीक है, तो इससे जो है ना वो बंदा डरता रहे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खौफ से गमगीन रहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ताला की अजमत खुली हुई थी। ठीक है, कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं और मेरी हकीकत क्या है, मैं तो बंदा हूँ, अल्लाह ताला का बंदा हूँ, और बंदे की क्या, गुलाम की क्या हैसियत हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त इसी सोच में लगे रहते थे, इसी गम में करवट चैन ना आता। यानी एक ये जो ये वाली एक बेचैनी होती थी, बेसुकूनी होती थी, ये खुदा के खौफ वाली, और खुदा के बल्कि ये जो खौफ है ये भी दरअसल अल्लाह ताला की मोहब्बत ही से जन्म लेते हैं। तो इसको अल्लाह ताला की मोहब्बत की कैफियत भी कह सकते हैं और अल्लाह ताला की खशियत की कैफियत भी कह सकते हैं। तो इसमें फिर ऐसे शख्स को चैन नहीं आता, बल्कि ये हर वक्त जो है वो दौड़ दौड़ करके अपने रब को राजी करने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादा वक्त खामोश रहते, बिदून जरूरत के गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। बिला वजह गुफ्तगू फरमाना ये नबी अलैहिस्सलाम की आदत नहीं थी, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी मना फरमाते। जरूरत हो तो इंसान जरूर बोले, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो बिला वजह, जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन या जस्ट टू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, ये बहुत बड़ी बुरी आदत होती है और ये इंसान को फंसा देती है। जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा जो है वो स्लिप ऑफ द टंग का मुर्तकिब हो जाएगा। इसके आगे फरमाते हैं कि जब बोलते तो ऐसा साफ कि दूसरा आदमी खूब समझ ले, दूसरा आदमी खूब समझ ले, यानी जेरे लब बुड़बुड़ाना भी तो एक तरीका होता है ना बात करने का, कि अगले बंदे को बात ही समझ में ना आए कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि जैसे मर्मर करना। ठीक है, बात साफ नहीं हो रही तो अगर किसी को कोई नाउजुबिल्ला कोई कोई मसला है, कोई बोलचाल के अंदर उसको रुकावट है, तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन ऐसे बात करना कि अगले बंदे को सुनने में तकलीफ हो रही हो, तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि ऐसे मेरा अंदाज ना हो बात करने का, बात क्लियर हो। दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करना कि वो बस कान लगा करके किसी तरीके से सुने, वो मेहनत करे कि मेरी बात उसको समझ में आ जाए, मैंने तो बहुत ही हल्के से बात कर दी है। ठीक है, तो ये भी एक बद अखलाकी वाली बात हो गई। तो आप सरसर ऐसा नहीं करते थे, बोलते तो साफ कि दूसरा आदमी खूब समझ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना तो इतनी लंबी होती कि जरूरत से ज्यादा हो, और ना इस कदर कम होती कि मतलब भी समझ में ना आए। तो ये तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ना एक एक सलाहियत अता फरमाई थी। ये नबी अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी सिफत थी, जवामिउल कलिम होना। जवामिउल कलिम यानी जिसको उर्दू के मुहावरे में कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, यानी बहुत ही मुख्तसर अल्फाज के अंदर बहुत ही जामिया बात कर देना, मुकम्मल बात जो है ना वो कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कर देना, ये अल्लाह ताला ने नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्वालिटी अता फरमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामिउल कलिम अहदीस जो है वो फिर बहुत सारी हैं, और उलमाए कराम ने बाकायदा उनको किताबों के अंदर जमा भी किया है। जैसे कि जो हदीस की किताब है, हम इस वाले प्रोग्राम के अंदर भी शुरू में उसको काफी पढ़ा चुके हैं, दूसरे मौलिमात में भी पढ़ाया है, ज़ादुत तालिबीन हजरत मौलाना आशिक अली बुलंदशहरी रहमतुल्लाह की तरतीब दी हुई हदीस की किताब है। उसके अंदर जो है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कितने कम अल्फाज के अंदर कितने यानी पूरे दीन को जो है वो समो दिया गया कि उसके अंदर। फिर उसके बाद जो है वो अलमजालिसु बिल अमान, दूसरे हदीस बल्कि अद्दीन नसीहा, यहाँ पे किसी ने लिख भी दिया है अद्दीन नसीहा, दो अल्फाज हैं और दो अल्फाज के अंदर पूरा का पूरा दीन समझा दिया कि दीन तो सरासर खैर ख्वाही का नाम है, अल्लाह के साथ खैर ख्वाही, अल्लाह के रसूल के साथ खैर ख्वाही, आइम्मतुल मुस्लिमीन के साथ खैर ख्वाही, आम मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही, है ना। दो अल्फाज के अंदर क्या कुछ नहीं समेट दिया, अल मजालिस बिल अमाना, और इसी तरह से और बहुत सारी हदीस। तो मतलब भी समझ में आ जाए, ना ज्यादा हो ना कम अल्फाज हो। बात में जरा भी सख्ती ना थी, ना बर्ताव में किसी तरह की सख्ती थी। तो जब सख्ती की भी जरूरत होती थी, डांटना गुस्सा करना, तो सिर्फ उस वक्त सख्ती होती थी, आम लहजे में सख्ती नहीं होती। जैसे कुछ लोग जो है वो झड़क करके ही बात करते हैं, सख्त लहजे में ही बात करते हैं। कोई ऐसी जरूरत नहीं है इसलाह की, कोई ऐसी जरूरत नहीं है डांटने की, और फिर भी जो है बस डांट डपट का मामला जो है वो रखा हुआ है। उसी तरह बर्ताव के अंदर भी कुछ का एक होता है, ये पता नहीं ये एक मिजाज या क्या कहते हैं, मिजाज तो नहीं कहेंगे बल्कि इसको, ये एक सोच का अंदाज होता है कि अगले बंदे से ना मैंने सख्ती में ही बात करनी है तो वो मेरी इज्जत करेगा, और अगर मैंने सख्ती में बात नहीं करी, नरमी में बात कर दी, तो वो मुझसे फायदा उठा रही है, यानी मुझसे जो है ना वो क्या कहते हैं मुझे, यू विल टेक मी फॉर ग्रांटेड, ठीक है, यानी वो मुझे जो है वो फिर इज्जत नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से सख्ती से बात करनी है, चाहे जरूरत कोई भी नहीं है लेकिन बस सख्ती से बात करनी है। तो ऐसा नहीं था, अपने पास आने वाले की बेकदरी नहीं करते थे, यानी कोई आया है तो भाई ये कोई अल्लाह का बंदा ही है, और हर बंदे की अल्लाह ताला ने कोई इज्जत रखी है, तो उसके साथ में बेकदरी का मामला ना करूं कि भाई इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या हैसियत, तो उसको तवज्जो नहीं दे रहे। किसी की बात नहीं काटते थे, अलबत्ता अगर कोई खिलाफ इशारा कोई बात करता तो मना फरमा देते या वहां से खुद उठ जाते थे। तो शरीयत के खिलाफ बात का तो नबी को हुक्म होता है कि उसको जो है वो रोकना है, लेकिन आम बातों को जो है ना वो, यानी जो कता कलामी करना, किसी की बात को जो है वो काट दिया और अपनी बात शुरू कर दी, ऐसे नहीं करते थे। अल्लाह ताला की नेमत कैसी ही छोटी क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि वो चीज बजाहिर तो छोटी लग रही है लेकिन देने वाला तो छोटा नहीं है ना, देने वाला तो सबसे बड़ा है। तो उसकी नेमत है तो उसकी हर नेमत जो है वो बड़ी ही है। कभी इसमें ऐब ना निकालते थे, अलबत्ता जिस चीज को दिल ना चाहता उसको खुद ना खाते और ना उसकी तारीफ करते, बल्कि उसमें और ना उसमें ऐब निकालते, ठीक है भाई। तभी तौर पर अगर कोई चीज तबीयत को नहीं लग रही है, क्योंकि तबीयत के तकाजे जो है वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो हर इंसान की तबीयत के जो है ना वो कुछ तकाजे होते हैं, किसी को जो है वो, जैसे हम खाने पीने वाले लोग हैं माशाल्लाह, तो किसी को मीठी चीज जो है वो अच्छी लग रही होती है, किसी को नमकीन चीज ज्यादा अच्छी लग रही होती है, बल्कि हमने ऐसा भी देखा कि किसी को जो है ना वो जो टेस्टलेस चीजें होती हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनके अंदर ना मिठास है ना जो है वो उनके अंदर। तो तबीयतें अल्लाह ताला ने इस तरीके से मुख्तलिफ बनाई, तो इस वजह से तबीयत में किसी चीज का नहीं अच्छा लगना, ये ऐन मुमकिन है कि इवन नबी के साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को भी ऐसा होता था कि कोई चीज पसंद नहीं आ रही होती थी, लेकिन ऐब नहीं निकालते थे, ठीक है, इस तरह से कि उसका बनाने वाला जो है ना वो उसको बुरा लगना शुरू हो जाए, उसको उसका जो है वो दिल आजारी होनी शुरू हो जाए, तो ऐसे ऐब नहीं निकालते थे। बस जो मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया, और अगर नहीं खाया जा रहा, तबीयत को नहीं बिल्कुल भी जच रहा है, तो छोड़ दिया, ठीक है, उसके ऐब नहीं निकाले। बाकी आप किसी को जो है वो कुकिंग सिखा रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर उसने कुकिंग के अंदर कोई चीज गलत कर दी है तो फिर आपको उसके उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपने इसके अंदर ये चीज जो है वो ज्यादा डाल दी है, ये चीज कम डाल दी है, लेकिन ये जो बताना है ये ऐब निकालने की नीयत से तो नहीं बताना है, ये बताना इस नीयत से है कि भाई ताकि वो ये गलती दोबारा ना करें, ठीक है, कल को कोई और शख्स जो है उसका बनाया हुआ खाना खाएगा तो हो सकता है वो मिजाज का तेज हो, वो मिजाज का जो है वो सख्त हो, तो उसने तो फिर इसकी इज्जत खराब कर देनी है, तो उस दिन की तकलीफ से बचाने के लिए आज मैं सहूलत से अच्छे अंदाज में जो है वो इसको इसकी गलती का बता दूं। ठीक है, तो ये एक खैर ख्वाही की नीयत हो गई, ठीक है, ऐब जोई की नीयत तो नहीं हुई ना। फिर ये दुनिया की कैसी ही बात हो, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आता था। मसलन किसी के हाथ से नुकसान हो गया, जैसे कोई चीज टूट गई वगैरह, किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया। यहां तक कि हजरत अनस रजील तारा अन कहते हैं कि मैंने 10 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, इन 10 सालों में किसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि क्यों किया और क्यों नहीं किया। ठीक है, मशहूर है बचपन से वाली हदीस जो है वो सुनते आ रहे हैं कि 10 साल तक रहे लेकिन क्यों, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ये नहीं कहा। बाज रिवायात में ये भी आया है कि हजरत अनस रजील तारा अन फरमाते हैं कि जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाज़ अफराद किसी गलती पर मुझे मलामत करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना फरमा देते। ठीक है, क्योंकि घर के अंदर और फर्द भी होते हैं, तो वो अगर मुझे मलामत करते, उनका नाम नहीं लिया कि कौन मुझे मलामत करता था, क्योंकि मलामत करना जो है वो एक मनफी सिफत है, और सहाबा कराम जो है वो अपने जो साथी होते थे ना, साथी सहाबा कराम या सहाबिया, तो उनकी किसी गलती का अगर तذکرہ करते भी थे तो उनका नाम लिए बगैर। ठीक है, बहुत सारे ऐसी अहादीस हैं जिनके अंदर के कोई बहुत ही बड़ी गलती हो गई किसी सहाबी से, तो उन सहाबी का नाम ही किसी को नहीं पता चल सका कि किन्होंने ये वाली गलती करी थी, बस किसी ने कहा, बस किसी ने ऐसे किया, ऐसे करके बताते थे। तो यहाँ पर भी अनस फरमाते हैं कि अगर किसी कोई मुझे मरामत करता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना फरमा देते थे, और फरमाते हैं कि जो कुछ तकदीर में था वो हो गया, अलबत्ता अगर कोई बात खिलाफ शरा हो जाती, शरीयत के खिलाफ, तो उस वक्त आप के गुस्से की कोई ताकत नहीं आ सकता था। ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी किसी से अगर इस तरह से हो जाए कि भाई इसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के इसने कर दिया, ठीक है, और जो है याद या ये कि शरीयत को जो है वो बहुत ही हल्का समझा है और इस वजह से जो है वो ऐसी ऐसी नाफरमानी वाली गलती कर दी है, तो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुस्सा आता था और रगे मुबारक जो है वो तन जाती थी और चेहरा मुबारक जो है वो सुर्ख हो जाता था। ये आपने सुना ही होगा। तो क्या मतलब कि अल्लाह के हुक्म की अहमियत थी, अपने हुक्म की अहमियत नहीं थी। अपने हुक्म से मुराद शरीयत वाला हुक्म नहीं, शरीयत के अल्लाह का हुक्म भी तो नबी अलैहिस्सलाम ही की जुबान मुबारक से इंसानों को पता चला, तो हर चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकल रही होती थी वो ना तो वो अल्लाह का हुक्म होता था और ना जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की अपनी अपनी बनाई हुई चीज होती थी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग हैं। जो चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो उनके खिलाफ वर्जी के ऊपर आप को गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन जो चीजें जो है वो नहीं है अल्लाह का हुक्म बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जाती तभी बात है, तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक है, आज हमसे यही गलती होती है कि हमें अपने बात ना मानने के ऊपर तो बड़ा गुस्सा आता है किसी के ऊपर, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी इज्जत नहीं करी, लेकिन किसी ने जो है वो अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, किसी ने अल्लाह के अहकाम की इज्जत नहीं करी, हमें कोई गुस्सा नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही उलट मामला है, और जाहिर है ये फिर अल्लाह ताला को ये बात हरगिज पसंद नहीं आती कि भाई ये क्या बात हुई, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम्हारे हुक्मों के ऊपर जो है तुम्हें गुस्सा आता है ना पूरा होने पर, और मैं सब कुछ होने के बावजूद मेरे हुक्म के टूटने के ऊपर तुम्हें कोई गुस्सा ही नहीं आता, तो ऐसा अपने जाती मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं किया। अगर किसी से नाराज होते तो सिर्फ मुंह फेर लेते, यानी जुबान से कुछ सख्त सुस्त ना फरमाते थे। ठीक है, बस दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, दूसरे शख्स की तरफ देख लिया या दूसरी चीज की तरफ देख लिया, लेकिन जुबान से उसको जो है वो बुरा भला नहीं कहते थे। और जब खुश होते तो निगाह नीची फरमा लेते थे। कंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मो हया थी, कहकहा लगाकर नहीं हंसते थे बल्कि सिर्फ मुस्कुरा देते थे। कहकहा लगा करके हंसना ये एक बुरी आदत होती है, और इसको अगर किसी को है ये आदत तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो इनशाला कुछ दिनों के अंदर ये आदत खत्म हो जाती। आदतें ऐसी नहीं होती कि जो कि कभी भी बदल ना सके। हाँ, कोई इंसान बदलना ना चाहे और आदत को जो है वो ऐसा समझ करके इग्नोर करता रहेगा, बस ये तो आदत है, मेरा इसके ऊपर कोई अख्तियार नहीं है, तो जाहिर है ऐसे शख्स की आदत नहीं बदलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आदत को, अगर वो गलत आदत है तो उसको बदलने की कोशिश शुरू कर देता है ना, तो बेशक उसको वक्त लगता है, एक दिन में आदत नहीं बदलती, हत्ता कि एक हफ्ते में, एक महीने में भी कुछ आदतें होती हैं जो कि नहीं बदलती, लेकिन जो मेहनत करता रहे तो उसकी आदतें जो है वो बदल जाती हैं, चाहे बहुत ही बुनियादी नौयत की आदतें हो ना, तो वो भी बदल जाती हैं। तो पैखा लगाना वाली आदत जो है वो अगर है, बचपन से आई हुई है, तो उसको खत्म करने की कोशिश शुरू कर दें, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। सबके साथ मिलजुल कर रहते, ये नहीं कि अपनी शान बढ़ाने के लिए लोगों से खिंचने लगे, बल्कि कभी कभी किसी का दिल खुश करने के लिए हंसी मजाक भी फरमा देते थे। ठीक है, तो एक तरफ अल्लाह ताला का इतना खौफ, अल्लाह ताला की बेनियाजी का खौफ है और अल्लाह ताला की नाराजगी का खौफ है, लेकिन हंसी मजाक भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, और इसके बाकायदा हदीसों की किताबों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के मजाक जो है वो लिखे हुए हैं। लेकिन वो मजाक भी कैसे होते थे कि उनके अंदर झूठ नहीं होता था, लेकिन कोई ऐसा अंदाज होता था बात करने का जिससे कि अगले बंदे को जो है वो हंसी आ जाए। शान बढ़ाने के लिए लोगों से खिंचना, अलग अलग रहना कि भाई लोग जो है ना वो फिर कुछ देखें, अच्छा ये तो कोई कोई खास पर्सनैलिटी है, तो कोई खास चीज के, तो लोगों में घुलते मिलते नहीं है, नहीं बल्कि लोगों के अंदर घुलना मिलना, जाहिर है शरीयत को पामाल करके घुलना मिलना ये तो जायज नहीं होता कि कहीं पे जो है वो गाना बजाना चल रहा है तो वहां पर भी घुलना मिलना शुरू कर दिया, कहीं पे जो है वो बेपर्दगी हो रही है तो वहां पर भी घुलना मिलना शुरू कर दिया, नहीं बल्कि ऐसी जगहों से गुनाह की वजह से अलग रहना, खिंच करके रहना जहां पे गुनाह हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर लोगों के साथ घुल मिल करके रहना। तो इसमें भी वही बात फरमाते जो सच्ची होती थी, ठीक है, वही बात सी मजाक वाली जो बात हो गई, तो उसमें भी सच्चा मजाक ही होता था। नफलें इस कदर पढ़ते हैं कि खड़े खड़े दोनों पांव सूज जाते। ठीक है, आप ने इबादतों के अंदर, यानी जो मुसल्ले की इबादतें थीं, तो उनके अंदर अपने आप को थकाया, और उसमें भी नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू में तो सारे सहाबा के ऊपर तहज्जुद जो है वो लाजिम थी, लेकिन बाद में जो है वो सहाबा के लिए जो है वो तहज्जुद नफली इबादत बन गई। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तो तहज्जुद फर्जी थी, और नबी अलैहिस्सलाम उसके अंदर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा मशक्कत फरमाया करते थे, लेकिन सहाबा को उसके ऊपर इंकरेज नहीं किया करते थे। जैसे कि वो बड़ी मशहूर हदीस है कि तीन जो नौजवान सहाबा थे तो उन्होंने इरादा कर लिया एक दिन, एक ने कहा कि जी मैं तो बस सारी सारी रात इबादत करूंगा, मैं तो बीवी के पास जाऊंगा ही नहीं, और दूसरे ने कहा कि मैं तो बस हर रोज रोजा रखूंगा, और तीसरे ने भी इसी किस्म की बात कही थी कि मैं तो जिहाद करूंगा या कोई और इस तरह की चीज, तो उनकी शिकायत हो गई नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो नबी अलैहिस्सलाम ने तीनों को बुला लिया और उनको कहा कि भाई यानी मैं रात को सोता भी हूं, यानी तहज्जुद भी पढ़ता हूँ लेकिन सोता भी हूँ, और मैं जो हूँ बीवी के पास भी जाता हूँ, मैं बीवी के हुकूक भी अदा करता हूँ, तो उनके इस किस्म के इरादों को सहाबा के नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, लेकिन आप खुद जो है वो इबादत में बहुत ज्यादा इबादत करते थे। ठीक है, तो इंसान जितना कर सके उतना जरूर करे, और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह आप मेरी इस इबादत को कबूल कर लें। जब कुरान शरीफ पढ़ते या सुनते तो अल्लाह ताला के खौफ और मोहब्बत से रोते। ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ते हुए अल्लाह ताला के खौफ से आंसू आ जाना, रोना, तो इसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ है। जैसे पिछले दिनों साजिद ने अपने हजरत की एक नसीहत किसी खुतबात में से शेयर भी करी थी, आई थिंक स्टेटस पे डाली थी, तो आप में से जिसने पढ़ी होगी उसको याद होगा इंशाल्लाह कि अगर नात सुनते हैं तो बड़ा रोना आ जाता है, लेकिन नात तो बंदों का कलाम होता है, तो नात सुन करके रोना आता है तो कुरान सुन करके क्यों नहीं रोना आता, या तरावी के अंदर जो है वो किसी को रोना क्यों नहीं आता, उसमें तो अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही होती है, तो उसकी वजह जो है ना यही होती है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी होती है, बल्कि جبکہ مخلوق سے جو ہے وہ ہمیں محبت ہوتی ہے، تو ان کی بات کا ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تو اس کا ہمارے دل کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کی محبت کم ہوتی ہے. مزاج میں اس قدر عاجزی تھی کہ اپنی امت کو فرمایا کہ بڑھا چڑھا کر میری تعریف مت کرو، ایگزیجریشن مت کرو، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی تعریف نہ کرو کہ ایسا لگے کہ جیسا کہ بندگی سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز میرے اندر آ گئی. بیمار کی عیادت کرتے چاہے وہ امیر ہو یا غریب، نہ تو صرف امیر کی عیادت کہ جی غریب کی کوئی ویلیو ہی نہیں، اور نہ جو ہے وہ صرف غریب کی عیادت کہ جیسے امیروں سے جو ہے وہ کوئی بغض ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے. بھائی امیر بھی اگر ایمان والا ہے اور اگر امیر بھی جو ہے وہ جماعت کا فرد ہے، تو امیر کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا ہے اور ان کی بھی عیادت کرنی ہے. ایسا کوئی تھوڑی ہے، کوئی کمیونزم والا طریقہ کوئی تھوڑی ہے کہ جی امیر جو ہیں وہ ان کو یعنی ختم کر دو اور سب کی جو ہے وہ املاک کو جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دو کہ کوئی امیر رہے ہی نہ. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے. تو امیر کی بھی عزت اور غریب کی بھی عزت. کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ شروع کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے. لیکن صحابہ کرام نے پھر محسوس کیا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے جنازہ تیار ہونے میں اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ وغیرہ کھڑے ہونے میں تھوڑا تو ٹائم لگتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے اندر لگ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تو بہت قیمتی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں کہیں بھی، اب یہ مدینہ منورہ کا جو اصل شہر تھا وہ تو قریب قریب تھا جو مسجد نبوی کے اندر اب سارا کا سارا آ جاتا ہے، لیکن دوسری جو 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 محلے تھے وہ تو کافی کافی دور تھے نا، جیسے بنو حارثہ کا محلہ ہے یا بنو ظفر کا محلہ ہے یا قباء کی جو جگہ ہے، اچھی خاصی دور ہے یہ ساری جگہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی گویا کہ یہ سبربس تھے یا مضافاتی علاقے تھے مدینہ مرورہ کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا دور دور چل کر کے جا رہے ہیں، وہاں پر پھر اس کے بعد تیار ہو تو پھر میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. تو پھر صحابہ نے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے اطلاع نہیں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں، بلکہ جنازہ وغیرہ تیار کر کے پھر جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موقع الجنائز جو مسجد نبوی کی جو بقی کی سائڈ والی دیوار ہے، تو وہاں پر جو ایک پورا کا پورا ایک ایریا بنا ہوا ہے باب النساء اور باب البقی کے درمیان، باقاعدہ دیوار کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ، تو وہ موقع الجنائز ہے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے. تو فقہ نے اسے یہ بھی لکھا کہ اگر مجبوری نہ ہو تو نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد کے باہر پڑھانی، مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو یہ کچھ جنازے کے بارے میں بات ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ اس والی کلاس کا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے، تو ہم تھوڑی سی بریک لے کر کے پھر اس کے بعد مثالی عورت والی کلاس شروع کرتے ہیں. اس کی ریکارڈنگ کو آپ بند کر دیں.